हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दूसरा अध्याय श्लोक संख्या 2। इस आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के लिए गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो क्या है, कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महयं ददाति स्वपदान्तिकम्। यं प्रवजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्तिशतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससोऽनुमुपयामि गुरु मुनीना। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैतं गदाधारं श्रीवासदि गौरभक्तवृन्दा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। गुरु और गौरंग की असीम कृपा से हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के द्वितीय अध्याय के श्लोक नंबर 2 को कल पढ़ रहे थे, और हमने उसी को अभी आज कंटिन्यू करेंगे। तात्पर्य को श्री प्रभुपाद जी के पहले श्लोक का एक बार फिर से उच्चारण करते हैं। सुत उवाच यं प्रवजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि यं प्रवजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदय मुनिमानतोऽस्मि यं प्रवजन्तमनुपीतमपीतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रीति तन्मयतया तरवोभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यं प्रवजन्तम् अनुपेत्यमपेत्यकर्तम् प्रवजन्तम कहते हैं संन्यास लेते समय अनुपेत्य यानी संस्कार किए बिना जो जनेऊ संस्कार है या उपनयन संस्कार है उसकी किए बिना उपेत कृत्य जो कि करने चाहिए थे द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव जब वो बगैर ये सारे संस्कार किए बिना ही जा रहे थे तो जो द्वैपायन है द्वैपायन कौन है इतिहास जी है जो कि उनका नाम द्वैपायन क्यों है क्योंकि वो कृष्ण द्वैपायन उनका नाम था क्योंकि वो यमुना जी के किनारे पर वहां पर उनका जन्म हुआ था तो ये द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा कि वो विरह कातर जुदाई के डर से बहुत ज्यादा अपने पुत्र की जुदाई से डर से आजुहावा जोर जोर से पुकार रहे थे हे पुत्र सुखदेव गोस्वामी पीछे आगे आगे जा रहे थे और उनके पीछे पीछे वेद व्यास जी अपने पुत्र को पुकारते पुकारते जा रहे थे पुत्री थी तन्मय तया तरवो भी नहीं दू लेकिन उनके पुत्र जो थे वो तो अपनी मस्ती में तन्मय थे और तरवो भी नहीं दू यानी वृक्ष उनको उत्तर दे रहे थे कि आप इतने ज्ञानी होकर पुत्र विरह में इतनी आसक्ति का अनुभव कर रहे हो हमसे सीखो हम भी तो पुत्रों के वियोग का अनुभव कर रहे हैं लेकिन आपकी तरह इतना आतुर तो नहीं हो रहे हैं इस तरह कहकर वृक्ष जो है वो उनको कह रहे थे और तम सर्वभूत हृदयम मुनिमानतोऽस्मि और ऐसे सुत गोस्वामी जो है वो सुखदेव गोस्वामी जो अपने गुरु हैं उनकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि आप समस्त जीवों के हृदय में आसीत हैं मुनिमानतोऽस्मि ऐसे सुखदेव गोस्वामी जो समस्त जीवों के हृदय में विराजमान होने वाले हैं क्योंकि जब वो प्रवचन करते हैं तो संपूर्ण सृष्टि के जितने भी जीव हैं उनकी बात को सुनेंगे जब तो उनके हृदय में वो स्थापित होने वाले मुनि हैं मैं उनको नमस्कार करता हूँ और ये यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जी के वैराग्य को उन्होंने वैराग्य का प्रदर्शन किया कि वो किसी चीज में कोई आसक्ति नहीं रखी जन्म लेते ही सब कुछ छोड़ कर घर से निकल गए माँ बाप की ओर एक बार देखा भी नहीं संसार की ओर सब कुछ छोड़ के विरक्त हो गए और वैराग्य बन गए और इसके अनुवाद को देखिए श्रील सुत गोस्वामी ने कहा मैं उन महामुनि सुखदेव गोस्वामी को सादर नमस्कार करता हूँ जो सभाओं के हृदय में प्रवेश करने वाले हैं जब वे यज्ञोपवीत संस्कार अथवा उच्च जातियों द्वारा मनाए जाने वाले उत्सवों को किए बिना संन्यास ग्रहण करने चले गए तो उनके पिता व्यासदेव उनके वियोग से भयभीत होकर चिल्ला उठे हे पुत्र उस समय केवल वृक्षों ने जो वैसा ही वियोग भावना में लीन थे तो शोकार्तक पिता के शब्दों का उत्तर दिया। और यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बताया हमें तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा कि वर्णाश्रम धर्म के अनुयायियों को अनेक कर्तव्यों का पालन करना होता है, ऐसे कर्तव्यों के अनुसार वेदों का अध्ययन करने वाले जिज्ञासु को प्रमाणिक गुरु के पास जाकर प्रार्थना करनी होती है, वह उसे शिष्य बना ले। जनेऊ उनका प्रतीक है जो आचार्य से वेदों का अध्ययन करने के पात्र हैं। श्री सुखदेव गोस्वामी ने ये संस्कार नहीं किए क्योंकि वे जन्म से ही मुक्त थे। वास्तव में ये करने होते हैं, समस्त वर्णाश्रम के धर्म जो पालन करते हैं उनको यह संस्कार करने होते हैं, लेकिन सुखदेव गोस्वामी क्योंकि जन्म से ही मुक्त थे इसलिए उन्होंने ये सब कुछ नहीं किया और सब कुछ छोड़कर संन्यास ग्रहण करके चले गए। यहाँ तक कल हमने पढ़ा और उसके उपरांत हमने सुखदेव जी के जन्म की कथा पढ़ी कि किस तरह से उनका जन्म हुआ और क्यों वो जीवन मुक्त थे और वो वास्तव में कोई साधारण जीव नहीं थे। शिव जी के द्वारा उन्होंने अमर कथा का पान किया था और उसके उपरांत वेद व्यास जी की तपस्या से वो इस संसार में आए थे। केवल श्रीमद् भागवतम महापुराण का प्रचार करना ही उनके जीवन का उद्देश्य था। तो इसलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद ने बताया क्योंकि वो जन्म से ही मुक्त थे। आगे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं सामान्यता मनुष्य साधारण जीव के रूप में उत्पन्न होता है और संस्कारों के द्वारा उसका दोबारा जन्म होता है। जब उसे नया प्रकाश दिखता है और वह आध्यात्मिक उन्नति के लिए दिशा खोजता है तो वेदों के उपदेश हेतु वह गुरु के पास जाता है। गुरु केवल निष्कपट जिज्ञासु को शिष्य के रूप में ग्रहण करता है और उसे जनेऊ यानी यज्ञोपवीत प्रदान करता है। इस प्रकार मनुष्य दो बार जन्मता है या द्विज बनता है। अब द्विज अक्सर हमने सुना है ना, द्विज किसको बोलते हैं? एक तो मनुष्य का जन्म होता है माता के गर्भ से, उस समय वो एक साधारण प्राणी होता है, उसे कोई ज्ञान नहीं होता है, उसे कुछ पता नहीं होता है कि मैं संसार में क्यों आया हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है। लेकिन जब उसके शुभ कर्म विकसित होते हैं और ब्रह्मांड ब्रह्मियते कौन भाग्यवान जीव, कोई जीव ऐसे बहुत सारे जीव उत्पन्न होते हैं उनमें से कौन भाग्यवान, कोई एक भाग्यवान जीव जिसको गुरु महाराज की कृपा प्राप्त होती है और गुरु महाराज उसे शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं और उसे जनेऊ प्रदान करते हैं, तो उस समय उनको एक नया जन्म प्राप्त होता है, एक नया नाम मिलता है, तो तब वो द्विज बनता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद बोलते हैं इस प्रकार मनुष्य दो बार जन्मता है उसे द्विज बनता है। द्विज बनने के बाद वह वेदों का अध्ययन करता है और वेदों में पटु होने पर वह विप्र बनता है। अब द्विज बनने के बाद क्या होता है, वो वेद शास्त्र की दीक्षा ले ली, अब जब वो सारे वेद पढ़कर पटु हो जाता है यानी एक्सपर्ट हो जाता है, सब कुछ उसको खबर पड़ जाती है वेदों के विषय में, फिर वो विप्र कहलाता है और विप्र या योग्य ब्राह्मण परब्रह्म का साक्षात्कार करता है और तब तक आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करता रहता है जब तक वह वैष्णव अवस्था तक नहीं पहुंचता। ऐसे करते 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 वो विप्र ब्राह्मण जो परब्रह्म का साक्षात्कार करता है और ऐसे करते 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 आगे जब बहुत ज्यादा भक्ति में उन्नति करता है तब वो वैष्णव अवस्था तक पहुंचता है। यह वैष्णव अवस्था ब्राह्मण के लिए स्नातकोत्तर अवस्था है। अर्थात यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जब एक ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है तो उसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टेज है जब कोई ब्राह्मण वैष्णव बन जाता है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि प्रगतिशील ब्राह्मण को निश्चित रूप से वैष्णव बनना चाहिए क्योंकि वैष्णव ही स्वरूप सिद्ध विद्वान ब्राह्मण होता है। वैष्णव बनना अत्यधिक आवश्यक है यानी भगवान श्री कृष्ण के भक्त के रूप में आपको भक्त बनना है। अगर जितनी भी वेदों का अध्ययन पढ़ लो, पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करो उसके बाद द्विज उसके बाद ब्राह्मण, और ब्राह्मण के बाद भी सारे ज्ञान हासिल करने के बाद भी जब तक आप भगवान के भक्त नहीं बन जाते, जब तक वैष्णव बन नहीं जाते, तब तक आपको कभी भी जीवन की सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। कृष्ण का भक्त जो है वो बनना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो यहाँ पर भी बता रहे हैं कि क्योंकि सुत्त गोस्वामी अपने गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी के विषय में बता रहे हैं कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और भगवान की भक्ति करने के लिए चले गए थे। तो यही जीवन की वास्तविक अवस्था है। उनको ये सब स्टार्ट वाले प्रोसेस से गुजरने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो जीवन मुक्त थे। तो उनको केवल और केवल ये, अब यहाँ से ये भी पता चलता है कि जो जीवन मुक्त भी हो जाते हैं उन्हें भी वैष्णव सिद्ध पद्धति का अनुसरण करना पड़ता है, फिर भी उन्हें भक्ति करनी पड़ती है, फिर भी उन्हें श्रीमद् भागवतम का श्रवण एवं बखान करना पड़ता है। जब आप हाईएस्ट स्टेज पर पहुंच जाते हो फिर भी आपको ये करना है। आगे श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी के विषय में कि श्रील सुखदेव गोस्वामी प्रारंभ से ही वैष्णव थे, अतः उन्हें वर्णाश्रम धर्म के संस्कारों की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो वैष्णव थे, भगवान के चरणों में उनका चित्त लगा हुआ था। तो फिर उनको ये प्रारंभिक ये जो वर्ण आश्रम धर्म का फॉलो संस्कार को फॉलो करने की आवश्यकता नहीं थी। वर्ण आश्रम धर्म का चरम लक्ष्य संस्कृत मनुष्य को भगवान के शुद्ध भक्त या वैष्णव में बदलना है। अतः जो व्यक्ति उत्तम अधिकारी वैष्णव द्वारा स्वीकृत होकर वैष्णव बन जाता है, चाहे उसके पूर्व जन्म या कर्म कैसे भी हो, उसे ब्राह्मण माना जाता है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि आपके पूर्व जन्म के चाहे कैसे भी कर्म हो, और इस जन्म में भी आपने चाहे जहाँ पर भी जन्म लिया है, यदि कोई व्यक्ति जो उत्तम अधिकारी है, जो वैष्णव है, उसके द्वारा यदि आपको स्वीकृति मिल गई, यानी किसी उत्तम वैष्णव शुद्ध वैष्णव के यदि आप शिष्य बन जाते हो, तो आप चाहे उसके पूर्व जन्म कैसे भी कर्म हो, उसे ब्राह्मण माना जाना चाहिए, क्योंकि उसने एक शुद्ध भक्त के से दीक्षा ली है, ब्राह्मण दीक्षा ली है। तो पिछले जन्म में या पिछले समय में वो क्या भी था, लेकिन उसे ब्राह्मण ही मानना चाहिए। इस बात की पुष्टि भगवान श्री कृष्ण करते हैं श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर अपि चेत् सुदुराचारो भजति मामनन्यभा साधुरे वसमन्तव्य सम्यक् व्यवसितो हि सः। चैप्टर नंबर 9 टेक्स्ट नंबर 30। भगवान कहते हैं यदि कोई जगन्य से जगन्य कर्म भी करता है, किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए, क्योंकि वह अपने संकल्प में अडिग रहता है। तो यदि वो भक्त बन जाता है, अर्थात किसी वैष्णव से दीक्षा लेता है, शुद्ध गुरु का सानिध्य प्राप्त करता है, तो उसे ब्राह्मण ही माना जाना चाहिए। भगवान स्वयं कहते हैं साधु रे व समन्तव्य, उसे साधु ही मानना चाहिए। खबरदार जो उसको कभी तुमने ये कहा कि पहले तुम क्या थे अब क्या बन गए, अब तो वो साधु बन गया है, वो ब्राह्मण बन गया है, भक्त बन गया है, क्योंकि वो अपनी भक्ति में अडिग है। ऐसा नहीं है कि आप दीक्षा ले लो फिर है ना बस अपने करतूत जो भी पहले के करते रहो। दीक्षा ले लो मतलब आपने एक नया जन्म लिया है, अब पुराने सारे संस्कारों से, पुराने जितने भी तुम्हारे अपराध वाली जीवन था उससे तुम्हारा कोई सरोकार नहीं। अभी जो गुरु महाराज आदेश देंगे ना उसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना है, गुरु के आदेशानुसार भगवान की भक्ति करनी है, जप करना है, कृष्ण सेवा करनी है, प्रसाद खाना है। तो जब आप इस तरह से अपनी जीवन शैली को बदलते हो ना तब आप ब्रह्म। ऐसा नहीं कि कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो कि ना भक्ति के नाम पर दबा होते हैं, गुरु महाराज से दीक्षा ले लेते हैं और अपने वही काले करतूत, अपने प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते हैं, चार नियम का पालन नहीं करते हैं, जप नहीं करते हैं, विग्रह सेवा नहीं करते, गुरु महाराज के आदेशानुसार प्रभात साधना नहीं करते। तो इनको ब्राह्मण मानने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में अपनी भक्ति में उन्नति करना चाहता है, जो सीरियस है, जो सिंसियरिटी के साथ अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को और गुरु महाराज के आदेशों को पालन करता है, तो उन्हें भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि साधुरेव समन्तव्य, तो उसे आपको साधु ही बनना मानना है, चाहे वो पहले क्या हो, आप ही चेत सु दुराचारी ही क्यों ना हो, लेकिन यदि वो मेरा भजन करता है तो वो साधु है, यदि वो मेरी भक्ति करता है तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। आगे श्री प्रभुपाद जी महाप्रभु के विषय में बता रहे हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस नियम को स्वीकार किया था और श्री हरदास ठाकुर को नाम आचार्य बनाया गया था। यद्यपि उनका जन्म मुसलमान परिवार में हुआ था, निष्कर्ष यह निकलता है कि श्री सुखदेव गोस्वामी जन्मजात वैष्णव थे, अतः वे ब्राह्मणत्व से समन्वित थे। उन्हें किसी प्रकार के संस्कार करने की आवश्यकता नहीं थी। वैष्णव की कृपा से कोई भी निम्न कुल में उत्पन्न व्यक्ति, चाहे वो किरात हो या होण हो, आंध्र या पुलिंद, पुलकश, आभीर, शुंभ, यवन, खस या इनसे भी निम्न क्यों न हो, उनका उद्धार हो जाता है। यहाँ पर बहुत ही निम्न निम्न जो योनियां हैं मनुष्यों की, देखिए हमें पता है 4 लाख किस्म के मनुष्य योनि होती है, उनमें बहुत गिरी हुई जो, अभी देखो ये तो निम्न योनियों में सबसे ऊपर बताए कौन सी होती है, शूद्र की होती है, क्योंकि शूद्र जो है वो वर्णाश्रम धर्म में आता है। एक अत्यंत सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, उसमें बताया जाता है ऐसे इसी तरह के शब्द हैं, ऐसे किरात होना अंधे कुलिंधा पुलकसा आभीर शुंभा यवना खसा। तो ये सारे जो हैं वो शूद्र से भी नीचे वाले जाते हैं, शूद्र के बाद किरात आता है और उसके बाद यवन आते हैं, खस, और ये सब अलग अलग मतलब योनि तो मनुष्य की है लेकिन बहुत ही नीचे वाले मनुष्य होते हैं। और श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यदि इन निम्न कुल में जन्म लिए हुए व्यक्तियों से, या फिर आगे कहते हैं या इनसे भी निम्न यदि हो, तो उसका उद्धार हो जाता है और वह सर्वोच्च दिव्य पद को प्राप्त होता है यदि कोई शुद्ध वैष्णव की शरण ग्रहण कर लेता है। श्री सुखदेव गोस्वामी सुत गोस्वामी के गुरु थे। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि क्योंकि ये क्यों श्री सुखदेव गोस्वामी की इतनी प्रसन्नता कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके गुरु थे, अतः वे नैमिषारण्य के मुनियों के प्रश्नों का उत्तर देने के पूर्व अपने गुरु को नमस्कार कर रहे हैं कि मेरे अंदर भले कोई क्वालिटी ना हो लेकिन क्योंकि मेरे गुरु महाराज इतने महान हैं तो उनकी कृपा से आज मैं इस योग्य हुआ हूँ कि मैं आप सबको आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए अभी प्रारंभ कर रहा हूँ। तो उस उत्तर देने से पहले मैं अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। तम सर्वभूतहृदयम् मुनिमानतोऽस्मि, मैं अपने गुरु महाराज जो कि समस्त जीवों के हृदय में विराजमान है उस मुनि को प्रणाम करता हूँ। मुनि का मतलब होता है मनन करने वाला, जो सदैव भगवान के विषय में चिंतन करते रहते हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। और आगे उससे भी सुंदर अपने गुरु महाराज के इससे भी अधिक गुणों का बखान करते हुए बता रहे हैं कि वह गुरु महाराज मेरे सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने इस संसार को क्या दिया है और उस समय वो जो उन्होंने दिया है वो देते समय उनका भाव क्या था। बहुत ही सुंदर अपने गुरु महाराज के विषय में बता रहे हैं, उनकी कृपा का अपने हृदय में भाव रख के बता रहे हैं कि उन्होंने कितनी करुणा की है, और उनकी भक्ति के विषय में बता रहे हैं। कहते हैं कृपया आप सब इस पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण कीजिए, क्योंकि ये द्वितीय चैप्टर के का जो तीसरा श्लोक है वो मंगलाचरण का श्लोक है, और इसको अभी हम पढ़ेंगे, तो आप लोग कृपया इसको पढ़ने का प्रयास कीजिए मेरे साथ साथ। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्ति शतां तमोऽन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम्। तं व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीनां यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्ति शतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीनां यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्ति शतां तन्तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीनां यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्तिशता तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीनां यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्तिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीनां यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्तिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीनां यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्तिशतां तमोदम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीनां यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्तिशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीना यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतितीर्ति शतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्यास सोनुमुपयामि गुरु मुनीनां शब्दों का अर्थ देखिए यह यह मतलब जो स्वानुभावम यानी आत्म अनुभवी का है स्व कहते हैं खुद को अनुभव हम क्या हैं आत्मा हैं और जो आत्मा को अनुभव करने वाला है कराने वाला है और है कैसा अखिल श्रुति सारमेकम अखिल का मतलब होता है समस्त श्रुति सार मतलब वेदों का सार जितने भी श्रुति हैं जितने भी वेद हैं उसका सार है उसका निष्कर्ष है एकम एकमात्र यह जो श्रीमद् भागवतम मेरे गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी ने दिया है वह कैसा है स्वानुभाव है स्वानुभाव मतलब आपके आपको आत्म साक्षात कराने वाला है और अखिल श्रुति सारम एकम यानी समस्त श्रुति समस्त वेदों का सार निष्कर्ष एकमात्र यही श्रीमद् भागवतम। और ये कैसा ग्रंथ है आगे कहते हैं अध्यात्म दीप। अध्यात्म का मतलब है दिव्य यानी जो इस भौतिक जगत का नहीं है वो आध्यात्म दीपक है और वो क्या करेगा अति तीर्थ शताम यानी पार जाने की इच्छा जिसके हृदय के अंदर इस भौतिक जगत को पार करने की इच्छा है जो दिव्य धाम में जाना चाहता है उसके लिए क्या करेगा तमंध जो गहन अंधकारमय संसार है उसके लिए दीपक बनकर रोशनी बनकर यह ग्रंथ जो है उसकी राह में रोशनी बनकर खड़ा हो जाएगा और वो आसानी से सरलता से भगवान के परम धाम तक जा सकते क्योंकि यह भौतिक जगत से उस आध्यात्मिक धाम तक पहुंचने का जो रास्ता है ना उसके लिए हमें यह भौतिक टार्च या भौतिक लाइट की आवश्यकता नहीं है या सूर्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है उसके लिए दिव्य दीपक चाहिए और यह एकमात्र दिव्य दीपक जो मेरे गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी ने दिया है जो अंधकार तमंध यहाँ पर लिखा आध्यात्म दीप मति तीर्थि शतम तमोंधम जो तम है जो अंधकार है जो अज्ञानता है उसका सर्वनाश करने वाला यह ग्रंथ है। तो ये ग्रंथ क्या करने वाला है शुरू में बताया यह स्वानुभाव मतलब आप क्या हो आपकी वास्तविकता क्या है स्व मतलब आपकी वास्तविकता से आपको अवगत कराएगा वास्तव में हम कुछ और हैं और अपने आप को समझ कुछ और रहे हैं यही दुख का कारण है। अगर जीव अपनी वास्तविकता को जान लेता है यदि जीव को ये पता चल जाता है कि मैं कौन हूँ और मेरा कर्तव्य क्या है उसके बाद कोई दुख नहीं रहता। तो यह श्रीमद् भागवतम जीव को यह बता रहा है कि आप कौन वास्तव में हम संसार में भी देखते हैं यदि कोई ये जानना बंद कर देता यदि कोई इसको किसी को अपना अनुभव नहीं होता है स्वानुभव नहीं होता है कि मैं कौन हूँ तो वो सदैव दुखी होता है ना। अगर जैसे महाराज श्री उदाहरण दे रहे थे कि यदि कोई पुरुष ये भूल जाए कि मैं पुरुष हूँ और ट्रेन में चढ़ते वक्त लेडीज डब्बे में आके बैठ जाएगा तो क्या होगा वहां पर सारी लेडीज उसकी पिटाई करेंगी टीसी पकड़ेंगे डंडे लगेंगे और पनिशमेंट होगी ऊपर से चालान होगा। उसी तरह से अगर मछली ये भूल जाए कि मैं मछली हूँ और बाहर निकलकर मनुष्यों की तरह चेष्टा ये रूम में या फिर गाड़ियों में घूमने की चेष्टा करे तो तड़प तड़प के मर जाएगी। उसी तरह से जीव वास्तव में भगवान का दास है जीवेर स्वरूप होए कृष्णेन नित्य दास ये कृष्ण का नित्य दास है और जब जीव अपने इस अनुभव अपने इस स्व वास्तव में वो क्या है इस चीज को जब वो भूल जाता है तब वो कष्टों का सामना करता है फिर उसे पग पग पर कष्ट वास्तव में जीव पागल हो जाता है। ये पागल ही तो है जो अपने आप को नहीं जानता कि मैं कौन हूँ और जब वो जानता नहीं है कि मैं कौन हूँ तो वो उसी तरह से कार्य भी नहीं कर रहा वो वही भौतिक कार्य कर रहा है जो बारंबार उसके कष्ट को कष्ट प्रदान करते हैं उसके जीवन में कष्ट उत्पन्न करते हैं। तो यह श्रीमद् भागवतम आपको हमको हमारे स्वानुभाव यानी कि वास्तव में हम कौन है हमें आत्म ज्ञान प्रदान करेगा। और यह श्रीमद् भागवतम कैसा है अखिल श्रुति सारम एकम अखिल श्रुति सारम एकम मतलब जितनी भी श्रुतियां हैं जितने भी वेद हैं उनका एकमात्र सार है। ये तो हम पहले भी पढ़ के आए ना श्लोक नंबर 3 में 1.1.3 में हमने पढ़ा निगम कल्प तरुर्गलितम फला जितने भी कल्प निगम है जितने भी वेद शास्त्र हैं उनका गलितम फलम ये कौन है श्रीमद् भागवतम और तब मीठा हुआ जब शुकमुखादमृतद्रवसंयुतम पहले से ही तो इसके अंदर समस्त शास्त्रों का सार था लेकिन जब सुखदेव गोस्वामी ने अपने मुखारविंद से इसकी चर्चा की मुखारविंद से इसका बखान किया तो और भी ज्यादा सुस्वादु हो गया। तो इसी के विषय में बता रहे हैं कि ये जो श्रीमद् भागवतम लिया है वो श्रुति सारम एकम समस्त शास्त्रों का सार है एकमात्र सार है और वो क्या करेगा आध्यात्म दीप एक ऐसा दीपक जो इस भौतिक जगत से का नहीं होगा, वो आध्यात्मिक दीपक होगा और इस संसार के से उस पार जाने के लिए हमारा जो तम अंधम, ये लिखा हुआ है ना, जो जाने की इच्छा करते हैं, यानी आध्यात्म दीप मति तीर्ति शतम, मतलब जो पार जाना चाहते हैं, और तमोंधम गहन अंधकार, यानी इस संसार के गहन अंधकार से भगवान के दिव्य जगत में जाना चाहते हैं, उनके लिए ये एक आध्यात्मिक दीपक उन्होंने प्रदान किया है। वास्तव में भक्तों, ये बहुत बड़ा अज्ञान है कि हम जीव इस संसार में आकर यहीं पर सुखी रहना चाहता है, सुखी होने की चेष्टा करता है, सदैव क्या सोचता है कि मैं कैसे इस संसार में सुखी रहूं, या तो सुखी रहने की चेष्टा करता है, या फिर ये सोचता है, उसका ये भ्रम हो जाता है कि मुझे कोई दुख नहीं है। मनुष्य को इस संसार में पदम पदम यत्वे पता, एक एक कदम पे दुख मिल रहा है, एक एक क्षण में दुख, हर एक चीज जो आपको सुखी करती है उसके अंदर दुख है, हर वो रिलेशन जो आपके साथ है वो उसके जरिए आप दुखी हो रहे हो, हर वो व्यक्ति, हर वो जीव आपको तंग कर रहा है, आपको दुखी कर रहा है जिससे आपका कोई संबंध है, लेकिन मनुष्य उस दुख को ना देखते हुए अपने आप को सुखी अनुभव करता है। ये सबसे बड़ी अज्ञानता है, लेकिन जब जीव के हृदय में ज्ञान उत्पन्न होता है तो वो क्या सोचता है कि मैं कैसे इस दुखमयी संसार को पार करूं। इस दुखमयी संसार को पार करने के लिए वो भगवान से प्रार्थना करता है, और जो साधुगण होते हैं, जो भक्तगण होते हैं, वो यही कार्य करने के लिए संसार में आते हैं कि जो चाहते हैं कि हम इस संसार, वैसे तो सब चाहते ही नहीं है, सबसे पूछो कि आप मुक्त होना चाहते हो, कोई चाहता ही नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि मैं मुक्त नहीं होना चाह रहा हूँ, मैं सुखी होना चाह रहा हूँ, हर कोई। लेकिन ये कितनी बड़ी अज्ञानता है कि वो सुखी होना चाहते बट सुखी होने का मेथड नहीं खबर है, क्योंकि सुखी होना है तो इस संसार से बाहर जाना पड़ेगा। इस संसार के अंदर रहकर सुखी होना संभव नहीं, क्योंकि जिसने इस संसार को बनाया है वो स्वयं कहते हैं कि ये संसार कैसा है, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों भरा संसार है, तो तुम्हें इससे दूर, इससे बाहर जाना निकलना पड़ेगा। कोई व्यक्ति दलदल में आकर यदि सोचता है कि मैं इस दलदल में कैसे सुखी रहूं, तो वो बेवकूफ है, उसे पता ही नहीं है कि यदि सुखी होना है तो दलदल से बाहर निकलना पड़ेगा। कोई समुद्र में, दुखों का समुद्र है, और समुद्र में बैठकर सोच रहा है कि मैं कहीं से सुख प्राप्त करूं, तो ये सुख प्राप्त करना उस समुद्र के अंदर संभव नहीं है। संभव कब है, जब उस समुद्र से बाहर है। वास्तव में इस संसार में सभी जीव दुखों का अनुभव कर रहे हैं, लेकिन फिर वो सब भूल जाते हैं कि हम दुख है हमें कोई, तो फिर ये जो हमें स्वानुभाव हमें ये बताता है कि संसार में केवल दुख ही दुख है, और इसको दुखों के समुद्र को पार करने के लिए जो वस्तु की आवश्यकता है वो वस्तु प्रदान करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण बताते हैं इस बात को, श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 15 टेक्स्ट नंबर 3 में भगवान कहते हैं, ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गताना निवर्तन्ति भूयः तमेव चाध्यं पुरुषं प्रपद्ये यत्तः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणि। ततः परम तत् परिमार्गितव्यम्, फिर आपको जब ये रियलाइज हो जाए कि इस संसार में सुख नहीं है तो क्या करना है, ततः परम तत् परिमार्गितव्यम्, आपको एक ऐसी जगह की खोज करनी चाहिए, एक ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए, यस्मिन गताना निवर्तन्ति भूयः, जहां जाकर दोबारा से इस दुखों वाले संसार में आना ना पड़े। और वहां पर जाके क्या करना है, तमेव चाध्यं पुरुषं प्रपद्ये, वहां पर जाकर एक ऐसे पुरुष की शरण ग्रहण करनी है, यत्तः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी, जिससे अनादिकाल से संपूर्ण जगत में हर एक चीज आरंभ होती है, और जो इस संसार का प्रत्येक वस्तु का सूत्रपात है, स्रोत है, उसे भगवान की शरण ग्रहण करनी है। तो इसी के विषय में बता रहे हैं यहाँ पर सूत गोस्वामी, कि ये मेरे जो गुरु महाराज हैं श्री सुखदेव गोस्वामी, उन्होंने वह भागवतम महापुराण हमें प्रदान किया है जो इस भौतिक जगत से हमें दिव्य लोक पर ले जाने के लिए रोशनी प्रकाश हमें प्रदान करेगा। और सुखदेव गोस्वामी ने यह भागवतम या यह ग्रंथ हमें क्यों दिया है उसके बारे में बताते हुए कह रहे हैं, संसारी राम करुणयाह पुराण गुह्यम। वास्तव में भक्तों, ये जो करुणा का गुण होता है ना, वो वैष्णव का सबसे मुख्य गुण होता है। भक्ति तो सब करते हैं, लेकिन अपनी भक्ति करना, अपनी साधना करना, ये कोई करुणा नहीं है। आप सोलह माला जप कर रहे हो, मंगला संध्या कर रहे हो और घर में विग्रह पूजा कर रहे हो, पूजा करना, भक्ति करना, ये कोई करुणा नहीं है। वास्तव में ये तो स्वार्थ है कि जीव केवल अपने ही विषय में सोच रहा है कि मैं कैसे इस संसार सागर को पार करूं। लेकिन जो वास्तव में भगवान के भक्त हैं, वैष्णव जन तो ताहे कहिए जे पीर पड़ाई जाने रे, पर दुखी उपकार करे पर मन अभिमान न आने दे। वो वैष्णव होते हैं वास्तव में जो दूसरों की दुख को महसूस करते हैं, जो दूसरों के दुख को अनुभव करते हैं और अपनी साधना के समय को भी दूसरों को ज्ञान प्रदान करने में व्यतीत करते हैं कि नहीं, उनको, दूसरों को भी ये सब अवसर प्राप्त होना चाहिए, ज्ञान प्राप्त होना चाहिए ताकि वो अपने जीवन को सफल कर सके। वास्तव में भक्तों, ये जो प्रवचन किया जाता है ना, वो करुणा से जब किया जाता है तभी उसका सही लाभ होता है। यहाँ पर लोग करुणा से प्रवचन नहीं करते, इसीलिए जीव का कल्याण नहीं होता। करुणा का क्या मतलब होता है कि आपको अपने मान सम्मान के लिए कुछ किसी को नहीं बता रहे हो। आप जो किसी को बता रहे हो वो इसलिए नहीं बता रहे हो कि चार लोग को पता चले क्या शास्त्र बोल रही है ये, या कितना अच्छा बता रही, इसलिए नहीं। वास्तव में आप समस्त जीवों का कल्याण करना चाहते हो। यदि कोई वक्ता जीवों का कल्याण करने के लिए हृदय में केवल एक ही इच्छा है कि इनका जीवन ऐसे ही व्यस्त चला जाएगा यदि उन्होंने भागवत महापुराण नहीं श्रवण किया, यदि श्रीमद् भागवत गीता के सिद्धांत को नहीं समझा, यदि कृष्ण को समझा नहीं, यदि कृष्ण के लिए हृदय में प्रेम उत्पन्न नहीं हुआ, तो सबका जीवन व्यर्थ ही चला जाएगा। तो उस करुणा से यदि कोई प्रचार करता है तो उससे बहुत बहुत उस लाभ होता है जो श्रोता है उनको। वास्तव में ये करुणा का जो गुण है ना, वो भगवान श्री कृष्ण का गुण है। हम ऐसे बोलते हैं ना, हे कृष्ण करुणा सिंधु। सिंधु कहा कृष्ण को, करुणा का सिंधु कहते हैं सागर को। भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। भगवान में करुणा का गुण है, इसीलिए यह करुणा का गुण भक्तों में भी आता है। लेकिन सच्चाई से यदि देखा जाए तो ये गुण भगवान से कई ज्यादा उनके भक्तों में होता है। क्योंकि भगवान तो इस संसार में आते हैं, वेद शास्त्र लिख कर दे देते हैं और कहते हैं पढ़ो और भक्ति करो, मेरे धाम में आ जाओ। भगवान संपूर्ण प्राणियों के हृदय में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि वो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि समस्त जीवों का जो जीवन है, ये मनुष्य जीवन कितना अंधकारमय है, कितना अपराधमय है। लेकिन हृदय से बाहर आकर कभी नहीं बोलते कि प्रभु बहुत हो गया, अभी ये संसार का आपने मजा बहुत लूट लिया, अब आप मेरा नाम स्मरण करो। कभी ये नहीं कहा हृदय से निकल कर कि तुम क्या कर रहे हो, ये बैठ के माला करो, भगवान के पवित्र नाम का जप करो, मेरी श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करो, भगवत गीता पढ़ो, भागवतम पढ़ो। कभी कहा? कभी हृदय के अंदर है वो बाहर आकर बोल सकने का भगवान के अंदर सामर्थ्य है, परंतु वो कभी भी हृदय से निकलकर किसी जीव को ये नहीं कहते कि आपके जीवन का लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है। क्यों आप ये जन्म मरण के चक्कर में फंसने के लिए उल्टी सीधे काम कर रहे हो, कभी नहीं बोला। और कभी जीवों पर कृपा करके एक बार आ भी गए जब द्वापर में, तो कुरुक्षेत्र की भूमि पर ये ज्ञान देना शुरू भी किया तो किसको दिया? केवल अर्जुन को। और कहने लगे, मैं तुम्हें क्यों दे रहा हूँ अर्जुन, जानते हो? भक्तोसी में सखा चेती रहस्यम हेत्र उत्तम। तुम मेरा भक्त हो, तुम मेरे मित्र हो, इसीलिए ये दिव्य ज्ञान तुझे समझा रहा हूँ कि केवल भगवान ने अर्जुन को दिया। अगर भगवान चाहते तो समस्त जीवों को, जितने भी वहां पर कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थली में करोड़ों लोग थे, 11 अक्षवणी सेना कौरवों की थी और 7 अक्षवणी सेना जो थी वो पांडवों की थी, भगवान को क्या करना चाहिए था? उठाना चाहिए था माइक और बोलना चाहिए था संपूर्ण जीवों को कि क्या ये युद्ध में लग रहे हो। सब लोग जितने भी वहां पर थे वो सब मनुष्य भगवान को भूल चुके थे, मोहग्रस्त हो गए थे। भगवान को उन सबको उद्धार करने के लिए प्रचार करना चाहिए था ना, लेकिन बोले नहीं अर्जुन, ये केवल तुम्हारे लिए है, दूसरों को नहीं दूंगा। फिर भी कहते हैं क्या, हे कृष्ण करुणा सिंधु। अर्जुन ने सोचा कि मैं दूसरों को बता दूंगा, जब भगवान मुझे सारा ये ज्ञान बता देंगे तो दूसरों को मैं बता दूंगा, तो कोई बात नहीं, अभी मुझे खाली सुना है। लेकिन जब पूरा बता दिया तो बोले 18.67 में, इदं तेना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुशुषवे वाचम न च माम योभ्यसूयते। देखो अर्जुन, मैंने तुम्हें बता दिया है, लेकिन ये देवी ज्ञान उनको कभी न बताना जो ना तो संयमी है, ना एकनिष्ठ है, ना भक्ति में लगे हुए हैं, और ना ही उनको बताना जो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। बताना है तो केवल किसको बताना, ये इमं परमं गुह्यं मद् भक्तेष्व विदास्यते भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वैशस्य संशया। जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करता है और अंत में वह मेरे पास आएगा। यह भगवान ने ऐलान कर दिया कि मेरे भक्तों के अतिरिक्त और कोई इस योग्य नहीं है कि मेरे इस परम गुह्य ज्ञान को ग्रहण कर सके, किसी को नहीं बताना। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान से करोड़ करोड़ गुना ज्यादा करुणामयी होते हैं। ऐसे ही भक्त हैं, ऐसे भक्त वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद जी। उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर जो न्यूयॉर्क अमेरिका का जो न्यूयॉर्क जो सबसे ज्यादा कंडम, सबसे ज्यादा कामी सिटी है, जहाँ पर सबसे ज्यादा अपराध होते थे, वो नशा करते थे, परस्त्री संग करते थे, जुआ खेलते थे, कोई भक्त नहीं था। लेकिन ऐसे व्यक्तियों के ऊपर भी कृपा की, करुणा की श्री प्रभुपाद जी ने, कि जब तक इनको कृष्ण के विषय में बताऊंगा नहीं, जब तक इनको कृष्ण के प्रेम के विषय में नहीं बताऊंगा, जब तक इनको कृष्ण के नाम के विषय में नहीं बताऊंगा, तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा। ये करुणा ही तो है कि भक्त भगवान की आज्ञा का उल्लंघन भी करने के लिए तैयार होता है कि नहीं, मैं मुझे अपराध लगे तो लगे, लेकिन मैं, हालांकि नवा अपराध भी कहा जाता है इसको कि अश्रद्धालु लोगों को भगवान के विषय में बताना, लेकिन भक्त अपने ऊपर, अपने सिर पर ये अपराध लेता है। और सबको नित्यानंद प्रभु जब यहाँ पर होते थे तो आना अपने दांतों में तिनका दबाकर हर किसी को ये प्रार्थना करते थे कि कृपया भगवान का नाम लो, कृपया भगवान का नाम लो। प्रभु रे आज्ञाए भाई मांगे भिक्षा, बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। मेरे प्रभु चैतन्य महाप्रभु ने आज्ञा दी है कि मैं आप सबसे ये भिक्षा मांगू कि आप भगवान का पवित्र नाम का जप करो, आप भगवान के पवित्र नाम खोलो। तो ये करुणा होती है भगवान के भक्तों में, जिसके कारण वो प्रचार करते, वरना श्री प्रभुपाद जी चाह सकते थे, उनकी एज थी 70 ईयर्स, 70 साल की उम्र में वो अमेरिका गए और भगवान के पवित्र नाम का प्रचार करना प्रारंभ किया। उस समय क्या करना चाहिए था उनको, अगर ये भौतिक दृष्टि से हम देखें, अगर हृदय में करुणा का भाव न हो तो फिर राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में आराम से बैठकर भगवान के पवित्र नाम का जप करना चाहिए था और अपने जीवन को सुखमयी बनाना चाहिए था। लेकिन इस अवस्था में 70 साल की उम्र में, इतने वृद्ध अवस्था में जब वो जा रहे थे जलदूत से, तो 2 हार्ट अटैक आए उनको। लेकिन कृष्ण के ऊपर उनको इतना विश्वास था कि भगवान जो है वो जरूर सहायता करेंगे और भगवान कृपामयी है, करुणामयी है, वो अवश्य मेरी सहायता करेंगे। उन अपराधी लोगों, किसी को जानते नहीं थे, कोई रिश्तेदार नहीं था वहां पर, कोई होटल इंगेज नहीं करवाया था कि वहां पर जाके ठहरूंगा, किसी को कुछ पता भी नहीं था वहां पर जाके क्या करूंगा। जो 40 रुपए लेकर एक हाथ में किरताल थी और श्रीमद् भागवत महापुराण के वचनों पर पूरी श्रद्धा थी कि जो इन श्रीमद् भागवत महापुराण के वचनों को पढ़ेगा सद्यो रिद्य वरुद्य ते तकृति जी, उसके हृदय में भगवान के पवित्र नाम, भगवान के पवित्र प्रेम का उद्गार होगा, भगवान के पवित्र प्रेम उसके हृदय में उत्पन्न होगा। इसी भागवतम के श्लोकों पर पूरा विश्वास करते हुए वो इस सिटी में गए। तो ये करुणा का गुण होता है भगवान के भक्तों में, जो भगवान के भगवान से भी ज्यादा उनके भक्तों में होता है। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि संसारिणाम करुणायाः पुराण गुह्यम, ये गुह्यम शब्द बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो भगवान की लीला है ना वो बहुत गुह्य होती है। भगवान स्वयं बताते भगवद गीता में 18.64 में, सर्व गुह्यतमं भूय शृणु मे परमं वच, इष्टोऽसि मे दृढमिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्। चूंकि तुम मेरे अत्यंत प्रिय मित्र हो इसलिए मैं तुम्हें अपना परम आदेश दे रहा हूँ, क्योंकि भगवान ने कह दिया जो ये मेरा परम आदेश है वो पब्लिक में सुनाने का नहीं है, सिर्फ तुम्हें इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुम मेरे अत्यंत ही प्रिय मित्र हो। इष्टोसि मे दृढमिति, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ। और 64 में तो ये बोला कि मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ तुम सुनो तुम्हारे लाभ के लिए, और बताया क्या, मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रति जाने प्रियोसी में। 64 में भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें ये सर्वगुह्यतम ज्ञान बता रहा हूँ, और 65 में बताया कि सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे नमस्कार करो, इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे, मैं तुम्हें वचन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे परम मित्र हो। भगवान ने केवल अपने मित्र को ही बताया, क्योंकि भगवान जिससे प्रेम करते हैं उसे ही केवल अपने धाम में लेकर जाने के लिए घोषणा कर रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि प्रति जाने प्रियोसी में मैं घोषणा करता हूँ कि तुम यदि मेरी भक्ति करोगे तो मेरे पास आओगे। लेकिन जब भगवान के भक्त होते हैं वो समस्त प्राणियों को यह अवसर प्रदान करते हैं और जगह जगह जाकर भगवान के पवित्र नाम का ये प्रचार करते हैं ताकि समस्त प्राणियों को ये अवसर प्राप्त हो कि वो भगवान को और भगवान के धाम को प्राप्त कर सकें। तो यहाँ पर बता रहे हैं संसारिणाम करुणायाः पुराण गुह्यम, ये जो भगवान की भक्त भक्तिमय लीलाएं श्रीमद् भागवतम में आएंगी वो बहुत बहुत गुह्य हैं। लेकिन हमारे मेरे गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी ने संसारियों पर करुणा करने के लिए यह बताई है, और तम व्यास सोनमुपयामि गुरु मुनिमा, गुरु मुनि नाम का मतलब होता है कि अब जो तम व्यास सोनमुपयामि, जो ये हैं यानी सुखदेव गोस्वामी जो हैं व्यास सोनम यानी व्यास जी के पुत्र हैं वो, उनको मैं नमस्कार करता हूँ। और पहले श्लोक में उनको क्या बोल के नमस्कार किया था, मुनि मानतोस्मि, मैं उस मुनि को नमस्कार कर रहा हूँ। लेकिन आज कह रहे हैं गुरु मुनि मुनि नाम, ये जितने भी मुनिगण हैं ना संसार में जो मनन करते हैं जो भक्ति करते हैं उन सबके गुरु हैं वो। क्योंकि यहाँ पर जहाँ पर सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित राजा की सभा में आए थे और उनको व्यास आसन पे बिठाया गया था, तो वहां पर समस्त जितने भी मुनिगण थे जितने भी आध्यात्मवादी थे जितने भी गुरुजन थे वो सब आए थे, और सब ने सुखदेव गोस्वामी को प्रणाम करके इस बात को स्वीकार किया था कि यही इस योग्य है जो परीक्षित महाराज के प्रश्नों का या उनकी समस्या का समाधान करेंगे। तो समस्त मुनियों के जितने भी मुनि थे उनके गुरु हैं मेरे गुरु महाराज सुखदेव गोस्वामी, इसलिए मैं उनको प्रणाम करता हूँ। अनुवाद देखिए, मैं तमाम ऋषि मुनियों के गुरु व्यासदेव के बेटे सुखदेव गोस्वामी को नमस्कार करता हूँ, जिन्होंने उन निपट भौतिकतावादियों के लिए जो संसार के गहन अंधकार में भागों को पार करने के लिए संघर्षशील हैं, अनुकंपा करके वैदिक ज्ञान के सार रूप में परम गोपनीय पुराण को स्वयं आत्मसात करके करने के बाद अनुभव द्वारा सह सुनाया, यानी कि उनको प्रणाम कर रहा हूँ जिन्होंने पहले श्रीमद् भागवतम को खुद सुना, और समस्त जितने भी जीव प्राणी जो इस संसार के गहनतम अंधकार को पार करके भगवान के लोक में जाना चाहते हैं उनके लिए वो करुणा से भर कर यह पुराण उन्होंने सुनाया। श्रील प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति से समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं इस उस्तुति में श्री सूत्र गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की पूर्ण भूमिका का सार प्रस्तुत करते हैं। श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र की सहज पूर्ण टीका है। व्यास देव ने वैदिक ज्ञान का सार प्रस्तुत करने के उद्देश्य से वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन किया था। श्रीमद् भागवतम इस सार की सहज टीका है। श्री सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्णता अनुभव पंडित थे, अतः उन्होंने इस टीका की स्वयं भी अनुभूति की थी। उन्होंने उन मोहग्रस्त व्यक्तियों पर जो अज्ञान के अंधकार को पार करना चाहते हैं असीम कृपा करके इसको ही अज्ञान को प्रथम बार सुनाया। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र की सहज पूर्ण टीका, यानी कि जितने भी वेद हैं उन सब का निचोड़ है श्रीमद् भागवतम, और ये एकदम सहज है। वेदांत सूत्र का एकदम सहज टीका है। और सुखदेव गोस्वामी वेदांत सूत्र के पूर्ण अनुभव पंडित थे। सुखदेव गोस्वामी वेदांत को सही तरह से जानते थे। उन्होंने स्वयं भी अनुभूति की श्रीमद् भागवतम को पढ़ा पहले, और उन्होंने उन मोहग्रस्त व्यक्तियों पर जो कि अज्ञान के सागर को पार करना चाहते थे उन पर कृपा करने के लिए इस गुह्य ज्ञान को प्रथम बार, पहली बार किसने कहा था? सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को बताया था। इससे पहले तो वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को बताया था, लेकिन पहली बार जो प्रचार हुआ था ना, जैसे प्रचार होता है कथा होती, तो वो फर्स्ट टाइम सुखदेव गोस्वामी ने संपूर्ण जो भी जानना चाहते थे या जो भी इस गहनतम सागर को पार करना चाहते थे उनको बताया। इस विषय पर तर्क करना व्यर्थ है कि भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। श्रील प्रभुपाद जी ने अत्यंत ही करुणा से ये बताया कि आप ये सोचो ही मत कि इस संसार में कोई भौतिकतावादी व्यक्ति सुखी हो सकता है। जो भी सुखी अपने आप को मानता है वो केवल भ्रम है, धोखा है। हम किसी से भी पूछते हैं कैसे हो, कैम शो, बोलेंगे मजे में, अच्छे हैं, ठीक है, एकदम परफेक्ट, मस्त, टिप टॉप, ऐसे बोलेंगे। लेकिन श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये तो बोलना ही व्यर्थ है कि कोई भौतिकतावादी व्यक्ति भी सुखी हो सकता है, ऐसा संभव ही नहीं। कोई भी भौतिकतावादी व्यक्ति, चाहे वह महान ब्रह्मा हो या क्षुद्र चीटी, सुखी नहीं रह सकता। श्रील प्रभुपाद जी ने तो एकदम क्लियर शब्दों में बता दिया कि ब्रह्मा से लेकर क्षुद्र चुनकी तक, अगर वो भौतिकतावादी है, अगर उसके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है, यदि वो भगवान के सानिध्य को स्वीकार नहीं करता, यदि वो भगवान की भक्ति नहीं करता, भगवान के पवित्र नाम का जप नहीं करता, जब तक तो वो भौतिकतावादी है तब तक सुखी नहीं रह सकता। प्रत्येक व्यक्ति सुख की स्थाई योजना बनाता रहता है, किंतु वह प्रकृति के नियमों से उलझन में पड़ जाता है। अतः भौतिकतावादी संसार ईश्वर की सृष्टि का गहनतम भाग कहलाता है। वो सब गहनतम भाग क्यों है? क्योंकि यहाँ पर अज्ञान है ना, अंधकार है, हर कोई दुखी है और योजना बना रहा है सुखी होने की। इसी अंधकारमय जीवन में वो इससे निकलने के बारे में नहीं सोचते, इसलिए ये घनतम भाग है, अंधकारमय भाग है। इसमें अंधकार क्या है कि वो यहाँ से निकलने की कोशिश नहीं करते हैं, बल्कि यहीं पर सुखी होने की चेष्टा करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बता रहे कि किंतु यदि दुखी भौतिकतावादी व्यक्ति इससे निकलने की इच्छा मात्र करे तो वह बाहर निकल सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश वे इतने मूर्ख होते हैं कि वे बाहर नहीं जाना चाहते। अतः उनकी तुलना, अभी वो बाहर जाना ही नहीं चाहते। किसी से पूछो मुक्त होना चाहते ही नहीं, बोलते हैं मुक्त नहीं होना चाहते, हम सुखी होना चाहते हैं। बेवकूफ, इस संसार में सुखी होना संभव नहीं है। सुखी होना है तो इस संसार से बाहर निकलो। दिव्य जगत में सुख है, इस संसार में तो पदम पदम यद विपदा सर्वत्र दुखम पश्येत, जहाँ पर एक एक कदम पर एक एक क्षण में दुख मिलता है वहां सुख कैसे कर सकते हो? लेकिन वो बोलेंगे नहीं, तुम्हें लगता है कि यहाँ पर दुख है, मगर मैं यहाँ पर सुख ढूंढ रहा हूँ, मैं खोज लूंगा, मिल जाएगा। शिला प्रभुपाद जी बोलते कितने दुर्भाग्यशाली हैं वो लोग जो बाहर जाना नहीं चाहते हैं, अतः उनका उनकी तुलना ऊंट से की जाती है। श्रीमद् प्रभुपाद जी यहाँ पर बहुत ही सुंदर उदाहरण दे रहे हैं एक ऊंट का, जिसे कांटीली टहनियां पसंद है क्योंकि रक्त से सनी हुई टहनियों का स्वाद उसे अच्छा लगता है। वह यह अनुभव नहीं कर पाता है कि यह तो उसी का रक्त है जो कांटों के द्वारा जीभ के कट जाने से निकलता है। यानी कि जब ऊंट जो होता है ना, उसको कांटीली जो पौधे होते हैं ना, वो खाने का बहुत शौक होता है, वो खाता है, उसको समझ में ऐसा आता है कि ये इतनी टेस्टी है, इसमें इतना स्वाद है, तो वो खाता रहता है खाता रहता है। लेकिन जब वो कांटों वाली झाड़ियां खा रहा होता है तो उससे उसकी जीभ कट जाती है और उसकी जीभ से ब्लड निकलने लगता है, उसकी जीभ से खून निकलने लगता है, और वो जो खून वो पी रहा होता है कांटीली झाड़ियों के साथ, वो खून जब उसके जीवा को लगता है ना, तो उसको टेस्टी लगता है। वास्तव में ये टेस्ट उसके अपने परिश्रम का होता है, उसके अपने ब्लड का, अपने रक्त का होता है, लेकिन वो क्या सोचता है कि ये टेस्ट मुझे उन झाड़ियों से मिलता है। उसी प्रकार इस संसार में जीव सदैव प्रसन्न होने के लिए, सुखी होने के लिए कोशिश करता रहता है करता रहता है करता रहता है, और कभी उसको कोई सुख मिलता है तो वास्तव में उसका खून ही होता है। आज जीव जिस चीज में आनंद महसूस करता है वो वास्तव में उसने अपने खून पसीने को एक करके पर्याप्त प्राप्त की होती है, लेकिन वास्तव में यह भौतिक वस्तु जो उसने प्राप्त की होती है वो भी वो सिर्फ उसको ऐसा लग रहा होता है कि वो सुख का कारण है, लेकिन वास्तव में उसकी जीवा को जिस तरह ऊंट की जीवा को काट रहा होता है उसके जीवन को दुखी ही कर रहे होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि इसी प्रकार भौतिकतावादी व्यक्ति को अपना रक्त मधु की तरह मीठा लगता है और अपनी ही भौतिक कृत्यों से परेशान होने पर भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहता। सारी भौतिक चीजें उसको परेशान ही कर रही होती है, लेकिन वो यहाँ से निकलने के लिए कोई चेष्टा नहीं करता। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति कर्मी कहलाते हैं। ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से ऊब कर इस भूल भुलैयों से निकल भागना चाहते हैं। यानी कि वो तो कर्मी होते हैं, वो क्या करते हैं, भगवान भी कहते हैं भगवत गीता 7.3 में, मनुष्याणाम सहस्रेशु कश्चित् यतति सिद्धये, हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्न करता है। तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं हजारों में से एक तो प्रयत्न करता है, बाकी तो भौतिकतावादी 999 तो भौतिक कार्यों में ही लगे रहते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही, यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लाखों कर्मियों में से कुछ ही भौतिक व्यापार से ऊब कर इस भूल भुलैयों से निकल भागना चाहते हैं। ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति ज्ञानी कहलाते हैं। वेदांत सूत्र ऐसे ज्ञानी के लिए है। ये जो शास्त्र है ना, वो कोई बेवकूफ लोगों के लिए नहीं है जो यहाँ पर संसार में सुखी होना चाहते हैं। इस संसार में मैं कैसे सुखी हूँ, यहाँ पर मुझे कैसे सुख प्राप्त हो, ऐसे बेवकूफों को तो यह शास्त्र पढ़ने के योग्य नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो वाकई में चाहते हैं कि हम इस संसार के दुखों से अब ऊब चुके हैं और आध्यात्मिक जगत को जाना चाहते हैं, यहाँ पर बताए ना, अध्यात्म दीपमति तीर्थिशताम। तीर्थिशताम का मतलब होता है जो पार जाने की इच्छा करते हैं। किससे? तमोंधम, अंधकार को, तम के अंधकार को पार करना चाहते, उनके लिए यह शास्त्र है। किंतु परमेश्वर का अवतार होने के कारण श्री सुखदेव गोस्वामी ने पहले ही देख लिया था कि धूर्त लोग वेदांत सूत्र का दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र की पूर्ति श्रीमद भागवतम पुराण के रूप में की। वास्तव में वेदांत सूत्र जो है, यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी ने बोला, ऐसे ही व्यक्ति जो के संसार से ऊब चुकते हैं और फिर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं ना, उनके लिए वेदांत है। लेकिन वेदांत में क्या है, जो वेद है उनमें क्या लिखा हुआ है, बहुत सी यामिमां पुष्पितां वाचम, बहुत सी ऐसी अलंकारमयी भाषा लिखी हुई है कि अगर ये चाहिए तो ये करो, अगर इस चीज को प्राप्त करना चाहते हो तो ये करो। तो श्रील प्रभुपाद जी ने यहाँ पर बता रहे हैं कि परमेश्वर का अवतार थे सुखदेव गोस्वामी, तो जानते थे कि धूर्त लोग वेदांत का दुरुपयोग करेंगे। यानी इस वेदांत को पढ़कर वो अपने परम लक्ष्य कृष्ण की प्राप्ति की बदली में इसी संसार में सुख ढूंढने के लिए चेष्टाएं करेंगे। इसलिए उन्होंने वेदांत सूत्र की पूर्ति श्रीमद भागवतम पुराण के रूप में बताई कि ये जो है श्रीमद भागवतम ही वेदांत सूत्र की पूर्ति है। यह स्पष्ट कथन है कि भागवत ब्रह्म सूत्र का मूल भाष्य है। श्री वेद व्यास जी ने अपने पुत्र श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवतम का उपदेश दिया, जो पहले से ही आध्यात्म अवस्था को प्राप्त हो चुके थे। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी कितना सुंदर बता रहे हैं कि ये वेदांत सूत्र जो है वो ब्रह्म सूत्र का मूल भाष्य है। अब इसका क्या मतलब है कि ये भागवतम महापुराण सुखदेव गोस्वामी जो पहले से ही मुक्त अवस्था में थे उनको वेदव्यास ने दिया, यानी कि ये एकदम परफेक्ट है जो मुक्त भक्त मुक्त जो आत्माएं हैं उनके लिए भी अध्ययन करने योग्य है। और श्री सुखदेव गोस्वामी मुक्त अवस्था में पहले इसकी अनुभूति की और फिर इसकी व्याख्यान की। श्री सुखदेव गोस्वामी की कृपा से श्रीमद् भागवतम सूत्र उन सभी निष्ठावान लोगों के लिए उपलब्ध है जो भवसागर से पार उभरना चाहते हैं। जिनको इस भवसागर से पार उभरने की इच्छा है तो सुखदेव गोस्वामी ने उन सब के लिए यह बहुत ही उत्तम हमारे लिए भेंट प्रदान की है, जिसको पढ़कर हम भगवान के परम धाम को पा सकते हैं। इस भवसागर से पार जाके भगवान के सानिध्य को प्राप्त कर सकते हैं और भगवान के प्रेम को हृदय में हम प्राप्त कर सकते हैं। ये श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी की करुणा से प्राप्त हुआ है। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्रीमद् भागवतम वेदांत सूत्र की द्वितीय टीका है, क्षमा अद्वितीय। अद्वितीय मतलब इसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता, द्वितीय मतलब दो एक जैसे हो, लेकिन अद्वितीय यानी कि इससे मिलता जुलता और कोई भी वेदांत सूत्र की टीका इसके जैसी एकदम मुनफरिद एकदम परफेक्ट टीका है यहाँ। और श्रीपाद शंकर आचार्य ने इसे जानबूझकर नहीं छुआ, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि इस सहज टीका को मात देना उनके लिए कठिन होगा। शंकर आचार्य श्रीपाद जो कि वो भगवान के अंशावतार और मायावाद का प्रचार करने के लिए आए थे, लेकिन वो जानते थे कि अगर श्रीमद् भागवतम की को उठाऊंगा तो उसको उसकी सरल यहाँ पर जो लैंग्वेज है जिसमें भगवान के साथ भगवान की लीलाओं का बखान है, भगवान के साथ सहज प्रेम है, इस टीका को मात करना उनके लिए बहुत कठिन होगा, क्योंकि इसमें साक्षात भगवान का सगुण अवतार, भगवान की सगुण अवतार की जो लीलाएं हैं उस पर ही ये ग्रंथ आधारित है, तो कोई भी मायावादी कोई भी निराकारवादी इसको कैसे इसको मात कर सकता है। उन्होंने शारीरिक भाष्य लिखा और उनके तथाकथित अनुयायियों ने भागवत को नवीन कृत कहकर इसका तिरस्कार किया। उन्होंने बोला कि ये तो नवीन कृत है, मतलब उन्होंने कहा ये तो वेदव्यास जी ने लिखा ही नहीं है, ऐसे ही है भागवतम, मतलब भागवतम को इतना इम्पोर्टेंस उन्होंने नहीं दी, क्योंकि वो मायावादी, आज भी मायावादी कभी भी मायावादी हैं, जो निराकारवादी हैं वो कभी भागवतम महापुराण को स्पर्श नहीं कर सकते, उनके हृदय में इसी इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था ना पहले, सद्यो हृदय वरुद्य तेत कृति भी, जो बहुत बहुत भगवान की भक्ति कर चुके हैं, भगवान के पवित्र नाम का जप कर चुके हैं, उन्हीं के हृदय में श्रीमद् भागवतम महापुराण को पढ़ने और श्रवण करने की इच्छा उत्पन्न होती है। तो मायावादी जो निराकारवादी हैं, जो भगवान को मानते ही नहीं है, भगवान के स्वरूप को नहीं मानते, भगवान के अस्तित्व को नहीं मानते, तो उनके हृदय में ये इच्छा ही उत्पन्न नहीं होती है कि वो श्रीमद् भागवतम महापुराण को अध्ययन करें या श्रवण करें। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, भागवत के विरुद्ध मायावाद संप्रदाय द्वारा ऐसे प्रचार से गुमराह नहीं होना चाहिए। जो ऐसे बोलते हैं कि श्रीमद् भागवतम तो ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसे लोग से हमें गुमराह नहीं होना चाहिए। इस प्रस्तावना श्लोक से नौ सिख्याए जिज्ञासु को यह जानना चाहिए कि भागवत एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईर्षा द्वेष स्वरूपी भाव रोगों से रहित पुरुषों के लिए। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, ये जो श्लोक आज हमने पढ़ा है, यह स्वानुभाव अखिलम श्रुति सारमेकम, ये आपको वास्तविक अपने स्व का अनुभव कराने वाला है, समस्त श्रुतियों का सार है, और जो वास्तव में आध्यात्म दीपमति तीर्थ शताम तमोद्धम, जो इस अंधकार से निकल कर आध्यात्म जगत में जाना चाहते हैं उनके लिए दीपक है। इसी श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भागवतम एकमात्र दिव्य साहित्य है जो परमहंसों तथा ईशा द्वेष रूपी भाव रोगों से रहित पुरुषों के लिए है। मायावादी भगवान के प्रति ईर्ष्यालु होते हैं, यद्यपि श्रीपाद शंकर आचार्य ने भगवान नारायण को सृष्टि के ऊपर यानी परे बताया है। ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मायावादी भगवान से विरोध करते हैं, तो वो भागवतम तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि यहाँ पर तो भागवतम में तो साक्षात भगवान की लीलाएं बताई गई हैं, तो वो मायावादी इससे विरोध करते हैं। ये ईर्ष्यालु मायावादी भागवत तक नहीं पहुंच सकते, किंतु जो लोग सचमुच इस भाव सागर को पार जाने के इच्छुक हैं, वे भागवतम की शरण ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया। अब वो श्री सुखदेव गोस्वामी जो कि ब्रह्म अवस्था में थे, जो मुक्त अवस्था में थे, यदि वो ब्रह्म अवस्था ही हाईएस्ट अवस्था होती तो फिर वो फिर से वापस श्रीमद् भागवतम का उच्चारण क्यों करते, श्रीमद् भागवतम का प्रचार करते वक्त ये क्यों कहते कि यही निगम कल्पत्रु है, समस्त शास्त्रों का सार इसके अंदर है। यदि वेद व्यास जी ने, जो कि समस्त वेदों के रचयिता हैं, उन्होंने श्रीमद् भागवतम महापुराण को ये कहा, धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम् अपरैरीश्वर। वेद व्यास जी ने कहा कि मैंने परिपक्व अवस्था में सारे शास्त्र लिखने के बाद श्रीमद् भागवतम को लिखा है, तो इसके अतिरिक्त और पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है कुछ भी। और सुखदेव गोस्वामी जो कि मुक्त हो गए थे, जीवन मुक्त थे, उन्होंने भी श्रीमद् भागवतम महापुराण का अध्ययन किया, अर्थात जो ब्रह्म स्थिति पर पहुंच जाते हैं उनके लिए भी श्रीमद् भागवतम पढ़ना अनिवार्य है। तो यहाँ पर बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी, बता रहे हैं कि जो लोग सचमुच इस भाव सागर से पार करने के इच्छुक हैं, भागवतम की शरण ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका प्रवचन मुक्त श्री सुखदेव गोस्वामी ने किया है। यह वह दिव्य दीपक है जिसके द्वारा ब्रह्म परमात्मा तथा भगवान के रूप में अनुभूत किए जाने वाले दिव्य परम सत्य को अच्छी तरह से देखा जा सकता है। वास्तव में भगवान यानी परम सत्य के तीन फेस जो है, जैसे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, इनको यदि सही रूप से देखना है, तो उसके सही रूप से अनुभव करना है, तो इसके लिए यह श्रीमद् भागवतम एकमात्र उपाय है। यदि हम इस श्रीमद् भागवतम को पढ़ते हैं और श्रवण करते हैं, तो इसी से हम वास्तविकता का ज्ञान होता है, इसी से हमें अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, और इसी से हम इस भाव सागर को पार करके भगवान के परम धाम तक पहुँच सकते हैं। तो आज के इस श्लोक में हमने यही पढ़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।